नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसमें से हबक्कूक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि हबक्कूक जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से प्रश्न करता है कि दुष्ट फलते और फूलते हैं परंतु धर्मी जन सताए जाते और उनकी उन्नति नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, यह उसका प्रश्न है, जैसा कि आज हम में से कई लोगों का भी यही प्रश्न है। इसके साथ परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं और परमेश्वर अपनी योजना को बताते हैं कि परमेश्वर क्रोध में धीरजवंत है और अपने समय के अंतराल में वह दंड देता है, अर्थात वह बेबीलोन को भी दंड देगा। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भी उन ज्ञान की बातों को सुने और सीखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य और जीवित वचन का, सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम हबक्कूक नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय रेडियो के निकट दूर दराज में बैठे हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा उन सबसे आप बोले और बातचीत करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके, हर एक प्रकार की बुराइयों से, शैतान के हर एक प्रकार के छल प्रपंच से, शैतानी बातों से आप उनकी रक्षा करें, आप उन्हें अपने ज्ञान में, अपने डर और भय में उन्हें बढ़ाएं। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, परेशान, हताश और निराश हैं, पिताजी आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, ताकि वे आपके वचन पर विश्वास कर सकें। आज अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें, हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि हबक्कूक अपने लोगों को देख रहा था, तो उसके मन में एक प्रश्न उठा कि परमेश्वर उनके कुकर्मों के लिए कुछ करता क्यों नहीं है। अब जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उन्हें अवश्य दंड देगा और कसदियों को साधन बनाएगा, तो उसके मन में अब यह प्रश्न उठता है कि परमेश्वर अपने काम में दुष्टों को क्यों सहभागी बनाता है। कसदी तो इसराइल से भी अधिक दुष्ट थे, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानते थे और स्वार्थी थे। परमेश्वर कहता है कि वह उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करके उन्हें भी उनके कर्मों के लिए दंड देगा, और उसके 5 कारण है जिनका उल्लेख उसने अध्याय 2 में किया है, जहां पर हमने देखा था हाय हाय करके उन्होंने 5 हाय हमें दिखाए थे। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हबक्कूक की पुस्तक उसके 3 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है हबक्कूक का सौभाग्य। जी हाँ, अध्याय 3 में हम हबक्कूक में एक बड़ा परिवर्तन को देखते हैं, और अध्याय 3 के अंत में हम देखेंगे कि उसमें आमूल परिवर्तन आ गया है। इस पुस्तक का आरंभ विषाद से हुआ है। हबक्कूक ने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, परंतु अंत में वह प्रशंसा के संबोधन से पुस्तक का समापन करता है। आप इस पुस्तक के अंत में व्यक्त विश्वास के तुल्य विश्वास अन्य कहीं भी नहीं देखते हैं। इस पुस्तक को 3 निश्चित भागों में बांटा जा सकता है। पहले 2 पद में हबक्कूक की प्रार्थना है। पद 3-17 में परमेश्वर की योजना है, और पद 18-19 में हबक्कूक का स्थान है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे हबक्कूक की प्रार्थना। हबक्कूक की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, शिग्योनित की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। ध्यान दीजिए, शिग्योनित, यह उनके संगीत का एक अंश है। कुछों का मानना है कि यह संगीत की राग के समान था, तो कुछ का मानना है कि यह एक संगीत वाद्य था। यही शब्द भजन संहिता 7 के शीर्षक में भी लिखा हुआ है। हबक्कूक की प्रार्थना एक भजन है, स्तुति का उच्च गान है। मेरे मित्रों, उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है, कहता है गुम्मट में उसका अनुभव और परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा ने उसे सच्चे विश्वास में ला खड़ा किया और उसकी आंखें खोल दी कि जो उसने अब तक नहीं समझा था उसे समझे। यह अध्याय इसके परिणाम स्वरूप उसके आनंद का भजन है। जी हाँ, यह तार वाले वाद्य और बाजा का बजाया जाना था, जैसा कि पद 19 के अंत में व्यक्त किया गया है। तार वाले वाद्य प्रायः लोक गीतों के लिए काम में लिए जाते हैं। इस भजन की तुलना आज के संगीत से आप ना करें। आज स्वतंत्रता के कारण मुझे यह संगीत सुनना पड़ता है जो ना मुझे पसंद है ना मेरे कानों का पसंद है। कई बार हम कुछ चीजों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने दास के माध्यम से इससे भजन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हबक्कूक नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं तेरी कृति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हबक्कूक का भजन किसी के कानों को कष्ट नहीं देगा। जी हाँ, यह एक अति उत्तम प्रार्थना है। वह कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कृति सुनकर डर गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने उससे कहा, हबक्कूक, मैं चाहता हूं कि तू गुम्मट में रह। मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा रख। तू सोचता है कि मैं अपने लोगों के पाप नहीं देखता। मैं बेबीलोन को उनके विरुद्ध काम में लूंगा, जैसे मैंने अशूरों को इसराइल के विरुद्ध काम में लिया था। वे मेरे क्रोध की लाठी थे। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के बाद मैं उन्हें भी दंड दूंगा, उनके पापों के दंड अवश्य दूंगा, परंतु धार्मिकता के आधार पर। मेरे प्रियो, अध्याय 2 में 5 हाय परमेश्वर के दंड की व्याख्या करती है। ये उनके पाप थे और इनके कारण परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था, शराब पीना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो लोग शराब पीते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है, अर्थात उन्हें दंड देता है। हमने यह भी देखा कि शराब के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारे देश पतन की गर्त पर चले जा रहे हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें दंड दूंगा। मेरे प्रियो, अब अपनी दिशा बदल करके वह कहता है, मैं तेरी कृति सुनकर डर गया। कौन कहता है? हबक्कूक कहता है कि मैं तेरी कृति सुनकर डर गया। वह किस बात से डर गया था, क्या आपने सोचा है? पहले तो वह सोच रहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परंतु अब वह इस तरह से डर रहा है कि परमेश्वर बहुत अधिक और बहुत कुछ कर रहा है। मेरे मित्रों, ध्यान दें, वह कहता है, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में जो तू उसको प्रकट करता है, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण रख। वह कहता है, हे परमेश्वर, मैं तो सोच रहा था कि तू चुपचाप बैठा है, परंतु अब मैं देखता हूं कि तू तो दंड देने जा रहा है। अपनी प्रजा पर दया कर और कसदियों पर भी दया कर। पहले तो वह यहूदा और बेबीलोन दोनों पर ही स्वर्ग से आग गिरवाएगा। कहने का अर्थ है कि यहूदा और बेबीलोन दोनों पर ही स्वर्ग से आग दिखाना चाहता था, परंतु अब वह कहता है दया करना, स्मरण करना। परमेश्वर दयावान है, वह अनुग्रहकारी है, वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो। और यही कारण है कि आज हम मनुष्य बार बार पाप करते हैं, चोरी, हत्या, व्यभिचार और अन्य अन्य प्रकार की बुराइयों में हम डूबे हैं, फिर भी परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। क्यों? क्या आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई दंड नहीं है? मेरे मित्रों, आप गलत फहमी में ना रहें, परमेश्वर न्याय करता है। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करता है, परंतु यदि हम हबक्कूक के गुम्मट में चढ़ जाएं, यदि हम सीख पाएं कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यदि हम परमेश्वर में जीवित विश्वास रखें और देखें कि दृश्य के पीछे क्या हो रहा है, तो मेरे विचार में हम हबक्कूक की नाई आश्चर्यचकित हो जाएंगे और निश्चय ही दया के लिए परमेश्वर को पुकार उठेंगे। अधिकांश विश्वासियों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखकर हाथ उठा दिए हैं, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर चुप नहीं है। किसी को तो प्रार्थना करना ही होगा। हे यहोवा, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हमें तेरी दया की आवश्यकता है, हमें तेरे प्रेम की आवश्यकता है, हमें तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग अपने देश, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को शांति दे, हमारे देश में उन्नति दे, हमारे राजनेताओं को बुद्धि और ज्ञान दे। हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रतिदिन हम सब बुराइयों में घिरे रहते हैं और हमारे जीवन से सिर्फ बुराइयां ही निकलती है, परंतु फिर भी हमसे हबक्कूक कहता है कि हमें प्रार्थना करना है। जी हाँ, परमेश्वर दयालु है, वह अनुग्रहकारी है, वह आपसे, मुझसे, हम सब मानव जाति से प्यार करता है, हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को जानता है। कई बार हम अपने गलतियों के कारण, उन बुराइयों के कारण, पाप के कारण अपने जीवन में दुख को लाते हैं और फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन की उन हरेक बातों को देखता है और समय के अंतराल में हमारा न्याय भी करता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस नगर का एक व्यापारी नामक नाटक में शेक्सपियर ने कहा है, दया की गुणवत्ता रुकती नहीं, वह आकाश की वर्षा के समान बरसती है, पृथ्वी पर वह दो गुना आशीष देती है। जी हां, हमें उसकी दया की आवश्यकता है। हम गीत गाते हैं, होएंगी बरकतों की बारिशें, परंतु हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दया की बारिश मांगनी है। हबक्कूक के जीवन में यह कैसा बदलाव आया है! पहले तो वह परमेश्वर से कहता है कि वह यहूदा वासियों को दंड क्यों नहीं देता है, क्योंकि वे बुराई कर रहे थे, उनके जीवन बुरे थे। परंतु जब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वह क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है, तब हब्बकूक पुकार उठा, दया करना स्मरण कर। यदि हमें परमेश्वर के दंड का बोध हो तो हम निश्चय ही परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक देंगे। परंतु कई ऐसे भी हैं, दंड को जानने के बाद भी घुटने तो क्या, वे परमेश्वर की निकटता में आना भी नहीं चाहते हैं। एक तरीके से कहूं तो ये उनका अक्कड़पन है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने नम्रता से आए। हब्बकूक की प्रार्थना वास्तव में इसराइल के इतिहास में परमेश्वर के कार्यों का अवलोकन है, क्योंकि परमेश्वर पहले कर चुका है, इसलिए वह भविष्य में भी करेगा। आप परमेश्वर पर निर्भर कर सकते हैं कि उसने पूर्व काल में जो किया वह भविष्य में भी करेगा। फिलिपियों की पत्री 1:6 में, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, क्या परमेश्वर ने आप में अच्छा काम आरंभ किया है? क्या वह आपको इस पल, इस क्षण तक संभाल कर नहीं लाया? उसने आपके जीवन में एक अच्छा काम किया है और प्रभु यीशु के दिन तक पूरा करेगा, जब वह आपको इस संसार में से ले जाएगा और आप उसके स्वरूप में हो जाएंगे। यही हमारा विश्वास है और यही हब्बकूक का भी महान विश्वास था। मेरे मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं और जीवन की कई समस्याओं में हम उलझकर बढ़ते ही रहते हैं, परंतु हब्बकूक के जीवन में हम देखते हैं कि जब इसराइलियों ने, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने पाप किया, तब उसने परमेश्वर से इच्छा रखी कि परमेश्वर उन्हें उनके पापों के लिए दंड क्यों नहीं देता है। और जब परमेश्वर ने यहूदियों के पापों के लिए दंड देने की योजना उसे बताई, अर्थात हब्बकूक को, जब उसने सुना कि परमेश्वर कसदियों के द्वारा यहूदियों को दंड देने पर है, तब वह निराश हुआ और उसने कहा कि परमेश्वर उन दुष्ट लोगों से इन्हें दंड क्यों दे रहा है, ये तो उससे अच्छे हैं, वे लोग तो परमेश्वर को जानते भी नहीं। फिर भी परमेश्वर उससे बताता है कि क्यों वह उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है या उन्हें प्रयोग में लेना चाहता है इन्हें नष्ट करने के लिए। परमेश्वर हब्बकूक को बताता है कि वह उन्हें इनके नाश करने के लिए प्रयोग में ले रहा है, परंतु वह उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, वह उनके पापों के प्रति उन्हें भी दंड देगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब इस बात को हब्बकूक समझ गया है तो वह परमेश्वर के निकटता में प्रार्थना करता है कि प्रभु अपने दया के द्वारा अपने लोगों को स्मरण रख। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जब हम परमेश्वर के निकटता में दयालु मन से आते हैं, अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, अपने गलतियों को हम लोग मान लेते हैं, तो मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर कठोर नहीं है, वह विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह आपके हर एक पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है, और यही कारण है कि वह हमें हमारे पाप करने के बावजूद भी तुरंत दंड नहीं देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें दंड नहीं देगा, हमें समय देता है पश्चाताप करने का, मन फिराने का, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर उस सच्चे परमेश्वर की ओर लौट आएं। और जब हम अपने मनों को फिरा करके परमेश्वर की ओर लौटते हैं, प्रभु यीशु के पास अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवन में एक नया जीवन दे देता है, हमें अनंत शांति दे देता है जो संसार हमें नहीं दे सकती। और यही कारण है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मेरे मित्रों, क्या आज आपके अंदर में वो शांति है? क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? यदि नहीं, तो आज आपके पास में अवसर है कि आप उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तब वह आप पर दया करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन में आशीषों की परिपूर्णता देगा। हबक्कूक अपने लोगों के विनाश को देख करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अपने दया को स्मरण कर। क्या आज आप अपने लोगों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आज चाहिए कि हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं। ऐसा ना हो कि हमसे लेट हो जाए और हम कहीं के न रह पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर के मार्गों पर चल सकें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रूह सी मेरी।